दुनिया भर में कंफर्ट के बढ़ने की वजह से आज हर इंसान लेजी बन चुका है, लेकिन ये कंफर्ट ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाला, बिकॉज हम उस डिसिप्लिन को भूल चुके हैं जिसने इस कंफर्ट को पैदा करा था। यानी हमारी लाइफ में इतना कंफर्ट इसलिए है बिकॉज हमारे से पहले आने वाली जनरेशन ने बहुत काम करा था और उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा था। लेकिन आज की मॉडर्न जनरेशन ये सोचती है कि सुख और शांति को मेंटेन थोड़ी करना होता है, ये दोनों चीजें तो हर इंसान को फ्री में मिलती हैं और ये हमारे राइट्स हैं। लेकिन सुख और शांति हमारे राइट्स नहीं बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। प्रोग्रेस एक साइकिल की तरह होती है, अगर आप पेडल मारते जाओगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन जिस पॉइंट पर आप पेडल मारना बंद कर दोगे साइकिल थोड़ा सा आगे चलेगी और फिर वो रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग कामचोर या फिर आलसी होते हैं उन्हें शुरू में कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं देखने को मिलता, बिकॉज जब आप यंग होते हो तब आपकी लाइफ को आपके पेरेंट्स संभाल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती जाती है और आप तब भी कोई काम करना नहीं शुरू करते तब लाइफ आपसे आपकी शांति और सुख छीनने लग जाती है। एट माय कोर मेरे को भी कोई ज़्यादा काम करना नहीं पसंद, और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं टाइम टू टाइम नेचर में जाकर नहीं बैठूंगा, अगर मैं बाहर निकलकर बिना किसी चिंता के बस आसमान को नहीं देखूंगा, और अगर मैं रोज़ मेडिटेट नहीं करूंगा तो मैं बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाऊंगा और मेरी प्रोडक्टिविटी गिरकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। बिकॉज जितनी ज़रूरी लाइफ में मूवमेंट होती है उतनी ही ज़रूरी लाइफ में स्टिलनेस होती है, लेकिन स्टिलनेस या फिर स्थिरता बहुत अलग होती है आलस से, क्योंकि स्थिर रहकर भी आप एक गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो और स्थिरता अपने आप में एक काम है। जिस तरह से जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तब हर सेट के बाद आप रेस्ट लेते हो ताकि आप पिछले सेट से रिकवर कर सको और आप अगले सेट में फ्रेश होकर जा सको, और अगर आप दोनों सेट्स के बीच में रेस्ट नहीं लेते तो आप कंटिन्यूसली काम करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पूरी गिरा लेते हो, आपकी सांस हमेशा फूली रहती है और जो भी आपका गोल है आप उस तक नहीं पहुंच पाते, और अगर यही पैटर्न लगातार चलता रहे तो आप खुद को बहुत जल्दी इंजर कर लेते हो। लेकिन सोचो जो इंसान हमेशा ही रेस्ट लेता रहता है बिना किसी पर्पस के, उसका रेस्ट इस तरह से क्रिएटिव नहीं होता बल्कि उसका रेस्ट डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। यानी जो लोग आलसी होते हैं वो क्रिएशन के साथ नहीं चल रहे होते हैं बल्कि वो क्रिएशन से बिल्कुल अलग चल रहे होते हैं। एक बहुत पॉपुलर कोट है दैट लेजीनेस इज नथिंग बट द हैबिट ऑफ टेकिंग रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड, और ये लग्जरी हर इंसान के पास नहीं होती। बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं और सिर्फ वो ही लेजी बन सकते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने ये बात भी करी थी कि कई लोग जो अपनी सक्सेस को डिले करते गए होते हैं उन्हें बहुत लेट आगे चलकर ये समझ आता है कि अगर वो कोई काम नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और जब वो 30-35 साल के हो जाते हैं तब वो बोलते हैं दैट 30s आर द न्यू 20s, और ऐसा बोल के वो अपने इनएक्शन और अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन सोचो एक ऐसा बच्चा जो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ है और उसे रोज अपने बाप के साथ मजदूरी करने जाना होता है, जिस दिन उसका काम करने का मन नहीं है वो ये नहीं बोल सकता दैट 10s आर द न्यू 5s, बिकॉज अगर वो ऐसा बोलेगा तो उसे भी पता है कि अगर मैं बहाना बनाऊंगा और मैं काम करने नहीं जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ तो शायद उस रात हमें पेट भर के खाना ना मिले, और तभी लेजीनेस एक लग्जरी है। और अगर आप भी अपनी लेजीनेस और हर काम को टालते रहने की आदत को ओवरकम करना चाहते हो तो आपको भी खुद के लिए लेजीनेस को बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछने के बजाय कि मेरा क्या काम करने का मन है, मेरा क्या काम करने का मन नहीं है, आपको अपनी डिजायर्स को साइड में रखना पड़ेगा और आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में क्या काम करने की जरूरत है, व्हाट इज नीडेड, और इस काम में कोई ज्यादा देर नहीं लगने वाली। अगर आप बस खुद से इतना क्वेश्चन करो कि इस मोमेंट में आपको क्या काम करना चाहिए जिसे आप अवॉइड कर रहे हो, तो आपका मन खुद आपको एक लिस्ट बनाकर दे देगा कि भाई वो वाला प्रोजेक्ट अधूरा है, अभी उस असाइनमेंट को तूने पूरा नहीं किया, या फिर इतने सारे ईमेल्स अभी ड्यू हैं जिसको तूने रिप्लाई नहीं करा, और तू बस कभी गाने सुन रहा है और कभी एक के बाद एक यूट्यूब वीडियोस देखे जा रहा है। और जिस मोमेंट पर आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या काम करने की जरूरत है, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कि आपका उस काम को करने का मन क्यों नहीं है। बिकॉज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि सर हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे और हमारी लाइफ इतने सालों से सेम ही है, तो ऐसा क्यों होता है? और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप कभी भी नॉलेज को खुद को चेंज ही नहीं करने देते हो, आप बस बुक्स से, कभी कोई वीडियो देख के, कभी कोई पॉडकास्ट सुन के नॉलेज ले तो लेते हो लेकिन आप कभी भी उस नॉलेज को एक्ट आउट नहीं करते हो। जैसे अगर मैं इस माइक और जिस कैमरा में इस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इनको अपने स्टोर रूम में रख दूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जस्ट बिकॉज मैंने इन टूल्स को अपने पास स्टोर करा हुआ है तो मेरा मैसेज दुनिया तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन बहुत से लोग नॉलेज को भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं, बिकॉज स्कूल ने हमें प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उससे डील करने का सही तरीका होता है उसे स्टोर कर लेना। इसी वजह से आज दुनिया में इतने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता सब कुछ है लेकिन वो समझते कुछ नहीं है और वो करते भी कुछ नहीं है। हम बेसिकली उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं देखी, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को ये बोलेंगे कि इनको बिजनेस करना नहीं आता। वो एक स्क्रीन के पीछे बैठ जाएंगे और ये कमेंट करते हैं कि इलोन मस्क क्या कर रहा है, ये इतना रिस्क क्यों ले रहा है, कभी ये ट्विटर को बाय कर रहा है, कभी उसका नाम चेंज कर रहा है, कभी इतने सारे चेंजेस इतने जल्दी जल्दी कर रहा है। और वो ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान इतने रिस्क ले रहा है और वो नहीं ले रहे जस्ट बिकॉज उनके पास नॉलेज है, तो जो रिस्क ले रहा है वो ऑटोमेटिकली गलत है। इवन मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट का, और उसमें वो यही बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ये सारे मीडिया के लोग जितना मेरे को डाउट करते हैं और मेरे को जज करते हैं और ये सोचते हैं जितने भी मैं रिस्क ले रहा हूं वो सब गलत हैं, मैं चाहता हूं ये और मेरे को डाउट करें, बिकॉज जितना ये मेरे को बोलते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं उतना ही मेरे अंदर की आग बढ़ती है, उतना ही मैं ज्यादा मोटिवेट होता हूं इनको गलत प्रूव करने के लिए। बिकॉज ये लोग जो दूसरों को जज कर रहे होते हैं बस इनके पास नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, और ये जो अप्लाई कर रहे होते हैं उस नॉलेज को उनको बोलते हैं कि ये पागल है। इनका एक्सपीरियंस क्या होता है? इनका एक्सपीरियंस चार दीवारों के बीच में शुरू होता है और चार दीवारों के बीच में ही खत्म हो जाता है। ये वही लोग होते हैं जो टीवी में कोई मैच देखकर बोल रहे होते हैं कि इसे ऐसे नहीं वैसे खेलना चाहिए था, लेकिन सोचो अगर आप भी उस इंसान की जगह पर होते हैं और आपके पास भी वो सारी ट्रेनिंग और सारा एक्सपीरियंस होता, तो खुद ये लॉजिकली सोचकर बताओ कि क्या आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है क्या वो 100% कन्वर्ट होती अप्लाइड नॉलेज में? इसका कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज नॉलेज का होना और नॉलेज को अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप वो इंसान हो जो बस बुक्स को रीड करता है, लेकिन कोई दूसरा इंसान है जो उन बुक्स को रीड करके अप्लाई भी करता है, तो आप दोनों में कोई थोड़ा सा फर्क नहीं है। दूसरा इंसान बस आपसे थोड़ा सा आगे नहीं है, बल्कि ही इज माइल्स अहेड ऑफ यू। हम सोचते हैं कि नॉलेज को खरीदा जा सकता है, हम कोई बुक खरीदेंगे उसमें दी गई नॉलेज को पढ़ेंगे और हम ऑटोमेटिकली उसमें दी गई नॉलेज के हकदार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें नॉलेज के लायक बनना पड़ता है, हमें उसके लेवल पर पहुंचना पड़ता है मेहनत करके। ये चीज कई रिलेशनशिप्स में भी होती है जहां पर एक इंसान को उनकी लीक के बाहर का कोई पार्टनर मिल जाता है और डीप इनसाइड उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं तो इसके लायक हो ही नहीं, मैं इस इंसान को डिजर्व नहीं करता, तो ये पक्का किसी मोटिव की वजह से है मेरे साथ, ये शायद मेरे पे चीट कर रहा है, ये मेरे को उतनी अटेंशन नहीं दे रहा। उससे वो क्वेश्चन करेंगे कि तूने उस इंसान की पिक्चर को क्यों लाइक करा, जस्ट बिकॉज उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि वो उसको डिजर्व नहीं करते और वो उनके लायक नहीं है, तो वो खुद ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं। और यही सेम चीज़ हम नॉलेज के साथ कर रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हमने नॉलेज को एक्वायर तो कर लिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने उसे टेस्ट नहीं कराया है, हमने कोई भी काम नहीं कराया, तो हमें नॉलेज की भी वैल्यू पता नहीं लगती। जैसे अगर मेरे पास ये ओशो की बुक है, अगर मैं बस इसको पढ़ूं और जो भी इसमें नॉलेज दी है उसको चुरा के अपने दिमाग में डाल लूं, तो जो मेरे दिमाग में नॉलेज होगी वो ओशो की होगी। लेकिन अगर मैं इस बुक को जीता हूँ, अगर मैं इसमें दी गई हर बात को अप्लाई करता हूँ, तो इसमें दी गई जो नॉलेज है उसे मैं और ओशो को ओन करेंगे। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बस सोचते रहते हैं और दूसरे वो होते हैं जो करते हैं, थिंकर्स एंड डूअर्स। और डीप इनसाइड आपको ये पता होता है कि आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हो। मुझे पता है कि मैं सिर्फ बोलने और सोचने वाले ग्रुप में नहीं बल्कि करने वाले डूअर्स के ग्रुप में आता हूँ। लेकिन जो लोग बस सोचते रह जाते हैं और हर चीज़ को वो इंटेलेक्चुअलाइज करते रहते हैं, उनमें कभी भी हिम्मत ही नहीं आती कि वो किसी चीज़ पे काम करें और कोई एक्शन लें। डॉक्टर कार्ल यंग ने यही सेम चीज़ बोली है साइकेडेलिक्स कॉन्टेक्स्ट में, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं LSD ले लूँगा, मैं मैजिक मशरूम्स ले लूँगा, या फिर मैं आयोवास्का की कोई ट्रिप पर चला जाऊँगा और मैं अंदर से टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा, मेरा दिमाग पूरा रिवायर हो जाएगा और जो भी मेरे अंदर पास्ट के ट्रॉमा हैं वो भी हील हो जाएंगे, और इनमें से मे बी कोई चेंज ट्रू भी हो, मे बी आपके साथ ये हो भी जाए, लेकिन ये जो चेंज होगा ये बहुत सरफेस लेवल पर होगा, बिकॉज आपने कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, आपने कोई काम ही नहीं करा उस नॉलेज या फिर विजडम तक पहुंचने के लिए, और आपको वो फ्री में मिल गई। जिस तरह से कोई इंसान अगर कोई काम नहीं करता और वो घर पर पैसा ले आता है, या फिर कोई गलत तरीके से घर पर पैसा ले आता है, तब ये बोला जाता है कि ये हराम का पैसा है। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई बिना काम करे बिना किसी एक्सपीरियंस के नॉलेज या विजडम तक पहुंच जाते हो, तब वो नॉलेज या विजडम भी हराम की होती है। तभी कार्ल यंग बोलते हैं बिवेयर ऑफ द अनअर्नड विजडम। जिस तरह से एक लॉटरी विनर होता है उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं बिना कोई काम करे, जस्ट बिकॉज उनका लक उनके साथ में होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्हें उस पैसे की वैल्यू नहीं पता होती और उन्होंने वो काम नहीं करा होता जिसके थ्रू पैसा आता है, वो बहुत जल्दी उन सारे पैसों को लूज कर देते हैं। और यही सेम चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो अपने दिमाग में नॉलेज को बिठा कर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उस नॉलेज को वेरीफाई नहीं करते, वो अपनी नॉलेज को वैल्यू भी नहीं करते, और इसी वजह से वो कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाते हुए भी कार्ल यंग बोलते हैं दैट इंटेलेक्चुअलिज्म इज अ कॉमन कवर अप फॉर द फियर ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जस्ट बिकॉज बहुत से लोग एक्ट करने में डरते हैं, वो कोई भी स्टेप लेने में कोई भी एक्शन लेने में डरते हैं, तो वो अपने इनएक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं अपने लॉजिक के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू। सोचो जो आपकी करेंट स्टेट है और जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है उसके बीच में खाई है, और जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं वो हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं कि दूसरी तरफ जाने के लिए मेरे को कितना तेज भागना पड़ेगा, किस तरह की जंप मारनी पड़ेगी, जंप मारने के लिए ट्रेनिंग कैसी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करने के लिए मेरे को मेंटर किस टाइप का चाहिए होगा, किस तरह की बुक्स रीड करनी पड़ेगी। नहीं यार, खाई बहुत ज्यादा गहरी है, क्या मेरे को जंप करना भी चाहिए? तो इस तरह की जब कैलकुलेशन दिमाग में इतनी चल रही होती है, तब बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इतना रिस्क वर्थ ही नहीं है, जब मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि मैं दूसरी साइड पर पहुंच पाऊंगा तो फिर क्यों ही इतना रिस्क लेना। लेकिन जो लोग वाइज होते हैं वो देखते हैं कि सारे वाइज लोग, सारे सक्सेसफुल लोग और सारे ग्रेट लोग दूसरी साइड ही हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये जंप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें चाहे मेरी जान भी चली जाए, कितना मर्जी रिस्क हो इस चीज़ में, जस्ट बिकॉज ये काम करना ज़रूरी है मेरे को ये करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, यानी किसी प्रिंसिपल में विश्वास रख के बस छलांग लगा देना और ये बोलना कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया और इससे जो भी आउटकम निकल कर आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और हम अक्सर जो भी एक्शन ले रहे होते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो फेथ पर ही बेस्ड होता है। कोई भी काम करते हुए, कोई भी मूवमेंट करते हुए हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो भी हम मूवमेंट करने वाले हैं उसका रिजल्ट वही होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे जिस सिटी में आप अभी हो, अगर आप उस सिटी से एक दूसरी सिटी में जाना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ी में तेल भरवा लेते हो, आप टायर के सारे एयर प्रेशर चेक कर लेते हो, जो भी सारी चीज़ें हैं आप मेक श्योर करते हो कि आप सही सलामत दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओ। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके टायर पंचर नहीं होंगे या फिर गाड़ी बीच में रुक नहीं जाएगी, कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको ये पता है कि दूसरी जगह पर जाना ज़रूरी है तो रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मैनेज कर लोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और हमारी पूरी सोसाइटी फेथ पर ही काम करती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस तरह से एक चीज़ ने पास्ट में काम करा वो फ्यूचर में भी वैसे ही काम करेगी। और जिन प्रिंसिपल्स में अक्सर हम अपना फेथ डालते हैं वो होते हैं इटर्नल प्रिंसिपल्स, यानी वो प्रिंसिपल्स या फिर लॉज जो हमेशा काम करते हैं, वो पास्ट में भी काम करते थे और वो फ्यूचर में भी काम करेंगे। और एक इटर्नल प्रिंसिपल जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं इस चैनल पर, वो ये है कि हमें सच बोलना चाहिए। और जिस तरह से मैं इस चैनल पर आपको सच की इंपॉर्टेंस को कन्वे करता हूँ, आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी थियोरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, कोई मैंने बुक नहीं रीड करी इस चीज़ पे, और कोई ये मेरी साइकेडेलिक एक्सपीरियंस की इनसाइट नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस आया था फेथ से, लीप ऑफ फेथ लेने से। और आपको फेथ की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए और आपको ये मैसेज देने के लिए कि आपके पास लीप ऑफ फेथ लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं जो भी ये एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब के लिए, इनका एक बिना साउंड इफेक्ट, बिना म्यूजिक वाला वर्जन मैं स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, गूगल पॉडकास्ट पर, हर ऑडियो वाले प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूँ। तो 2-3 साल पहले स्पॉटिफाई पर मेरा एक पॉडकास्ट किसी लड़की ने सुना और उसने मेरे को एक DM किया और उसने मेरे को बताया कि उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके घर में बहुत गंदा एनवायरनमेंट है, बहुत टॉक्सिक हैं उसके पेरेंट्स, और अगर वो घर से जरा सा बाहर भी जाए, अगर वो किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाए, तब भी उसकी मम्मी उसे बोलती है कि तू ये है, तू वो है, और बहुत गंदे नाम लेकर उसको पुकारती है। तो उसने बोला कि मैं इन प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, कैसे मैं अपने पेरेंट्स से डील करूं, बिकॉज इस एनवायरनमेंट में मेरी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली और मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी है। तो मैंने उसे ये सजेशन दी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट योर पेरेंट्स फॉल्ट, बिकॉज अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते रह सकते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि यार जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स इस तरह से हैं तो ये समझो कि उनकी पेरेंटिंग कैसी थी। अगर वो टॉक्सिक हैं तो ज़रूर उनके पेरेंट्स भी टॉक्सिक होंगे और कोई ना कोई उनकी भी कमी रही होगी। और उसने भी मेरे को यही बताया कि उसकी मम्मी के बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उन्हें और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा है, बहुत इंटेंस पेन है उनके अंदर, यानी जस्ट बिकॉज वो खुद इतनी ज़्यादा हर्ट थी वो अनइंटेंशनली अपनी बेटी को हर्ट कर रही थी, यानी उनको प्यार चाहिए था। और इस प्रॉब्लम को आप कभी भी हेट के साथ और आर्ग्यूमेंट्स के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको लॉजिक के साथ नहीं सॉल्व करा जाता। इस प्रॉब्लम को जब दूसरा इंसान पेन में होता है आप उसे हेल्प कर सकते हो लव के थ्रू ताकि वो रिसेप्टिव बने, और जब वो रिसेप्टिव बन गए तब आप सच बोलना शुरू करो। यानी मैंने उसे दो चीज़ें बोली कि सच बोल और प्यार से बोल, और फिर जो भी उसके लिमिटिंग बिलीव्स थे वो मेरे पर वही फेंकने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैंने अपने घर में सच बोला तो ये हो जाएगा, उन्हें प्यार नहीं चाहिए, वो हेट से भरे हुए हैं। बट मैंने उसे ये कहा कि दिस इज़ द सोल्यूशन और तेरे को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। और थोड़े टाइम बाद उसने मेरे को दोबारा मैसेज किया कि घर में सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी हैं और जो मेरा रिलेशन था मेरी फैमिली के साथ वो बहुत बेटर है जस्ट बिकॉज मैंने उनसे सच बोला और जो भी मेरे को प्रॉब्लम थी मैंने उनको कन्वे कर दी प्यार से। और थोड़े समय तक हमारी बात नहीं हुई बट फिर उसका मैसेज आया कि एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उसने बताया कि मेरी शादी होने वाली है बट मेरे को एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर एक लड़की को प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किल होती है, बट ये चीज़ लड़की वालों ने लड़के वालों को नहीं बताई थी। शादी की बात आगे चलती जा रही थी बट उसके फादर रिफ्यूज़ कर रहे थे कि अगर हम ये बात उसे बता देंगे लड़के वालों को तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, बहुत बदनामी होगी और हर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो शादी टूटने के साथ जुड़ा हुआ होता है वो हमें फेस करना पड़ेगा। बट अगेन मैंने उसे यही बोला कि अगर तू अभी इस चीज़ को रिवील नहीं करती और बाद में उन्हें पता चलता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज शादी हो चुकी है, सारा खर्चा हो चुका है, बात इतनी आगे जा चुकी है, तो वो बेवकूफ़ी है। तो कन्विंस योर फादर एंड टेल द ट्रुथ। और उसने यही किया। और अब कल दोबारा मेरे पास उसका मैसेज आया कि जस्ट बिकॉज वो शादी टूट गई थी और वहां पर वो सेटल कर रही थी बाय द वे एक बेकार से लड़के के साथ, अब उसका दोबारा मेरे पास मैसेज आया कि मेरी शादी होने वाली है 2 महीने में और एक ऐसे लड़के से शादी होने वाली है जिसमें हर वो करेक्टरिस्टिक है जो मेरे को एक लड़के में चाहिए था, और ये तभी हो पाया जस्ट बिकॉज मैंने वो शादी नहीं होने दी सच बोलकर। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है एक इंसान को कि सच अगर मैं बोलूँगा तो जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, और शायद मोमेंट में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी कॉन्सिक्वेंस इससे निकल के आता है वो सही होगा। और इस चीज़ को आप तब तक वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आप सच बोलना शुरू नहीं करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस की मदद से मैं आपको ऐसी हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस पढ़वा सकता हूँ जहाँ लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज सौरभ तुमने बोला था कि सच बोलो, शुरू में हमें डर लगा लेकिन इवेंचुअली इट टर्नड आउट टू बी द बेस्ट थिंग। और ये चीज़ मंडूका उपनिषद से निकल कर आई है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ इज द सुप्रीम। ये टाइमलेस प्रिंसिपल है जिसमें आप फेथ डालकर जो बेस्ट कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है किसी भी सिचुएशन से उस जगह तक पहुंच सकते हो, बट छलांग मारने के लिए करेज चाहिए होती है। और ये कोई एक बेवकूफ सा इंसान आपको अगर बोल रहे हो कि यार हमें ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने भी ये चीज कहीं पे पढ़ी हो कि सच बोलना अच्छा होता है और झूठ बोलना बुरा होता है, और आप ये अपने फ्रेंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो और वो पूछते हैं कि ऐसा तू क्यों बोल रहा है, तब आप बोलते हो कि यार मैंने ना एक ट्रिप ली थी अयोवास्का की और उसमें मैं कोई रियलाइजेशन हुई थी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाई बेवकूफ है क्या, जस्ट बिकॉज तेरे को एक रियलाइजेशन हुई, तेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूवन है। अगर मैंने अपने घर में जाके, अगर मैंने अपने फ्रेंड्स के आगे सच बोलना शुरू कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी सेम नॉलेज दो अलग अलग लोगों के पास हो सकती है लेकिन उनकी नॉलेज का भार भी अलग होता है। जिस इंसान का नॉलेज उसके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है वो आपको ज्यादा कन्विंस कर पाता है, उसकी बातों में ज्यादा कन्विक्शन होता है, लेकिन जो दूसरा इंसान बस ये बोल रहा होता है कि यार मैंने कैलकुलेट कर लिया अपने मन में और ये इस डेस्टिनेशन पर मैं पहुंचा हूं, ये मेरा कंक्लूजन है, उसकी बात फालतू की है। इसी वजह से जो भी इंसान कोई एक्शन नहीं ले पा रहा होता वो बहुत ज्यादा लेजी होता है, वो हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता है, हर काम को डिले करता जा रहा होता है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसमें मोटिवेशन की या फिर एनर्जी की कमी होती है। लेजीनेस का मतलब ही ये है कि आप खुद में फेथ ही नहीं रखते हो, आप किसी भी चीज में फेथ नहीं रखते हो, आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे को अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक डिसबिलीवर हो और आप खुद में बिलीव नहीं करते हैं। लेजीनेस बस एक सिम्टम है और आप अभी तक अपनी लेजीनेस को इसीलिए क्योर नहीं कर पाए हो बिकॉज आप इसे रूट कॉज की तरह ट्रीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनफ टाइम अपनी लेजीनेस को क्वेश्चन करते हो, इसे तोड़ते हुए चले जाओ, तो जो सबसे इसका स्मॉलेस्ट यूनिट निकल कर आता है वो हमेशा होता है फियर। और ये डाउट कि अगर मैंने इतनी सारी एनर्जी स्पेंड कर दी, अगर इतना सारा रिस्क ले भी लिया तो भी मेरा कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, तो भी मैं एक फेलियर ही रहूंगा, तो भी सक्सेस मेरे से दूर रहेगी। और आप इस सच तक भी बहुत ज़्यादा काम करके ही पहुँचते हो कि यूनिवर्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फेयर और बहुत ज़्यादा गिविंग है। और जो कोई भी इंसान हर उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हर वो काम करता है जिस काम को करने से रिजल्ट मिलता है, तो उसे भी रिजल्ट मिल जाता है। इट डजंट मैटर उसकी एज क्या है, इट डजंट मैटर उसके स्किन का कलर क्या है, इट डजंट मैटर उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका जेंडर क्या है। ये सारे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि अगर मैं एक लड़का हूं, अगर मेरी शक्ल ऐसी है, अगर मेरे जीन्स वैसे नहीं है, अगर मैं उस तरह की फैमिली में पैदा नहीं हुआ था तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जैसे रिसेंटली मेरे पास एक डीएम आया जहां पर एक इंसान बोलता है कि सर मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्राई किया कि मैं सक्सेसफुल बन पाऊं लेकिन मेरे को बार बार फेलियर मिला, जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो गया। और मैंने रिसेंटली एक रील देखी पुनीत सुपरस्टार की, जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि मैं तो बस अब किस्मत के भरोसे हूँ और अगर मेरी किस्मत में पैसा होगा तो पैसा खुद चलकर मेरे पास आएगा, और ये उसने मेरे को रील भेजी भी। और ये सोचो यार कितनी सरफेस पर लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि यार ये तो सच बोल रहा होगा, बट दिस इज हिज ब्रांड। और ज़रा सा मेरे को खोदने पर ही ये पता लगा, उसके एक दो इंटरव्यू मैंने देखे और वो वहाँ पर खुद बंदा ये बोल रहा है कि मैंने थ्रू आउट अपनी जर्नी वायरल होने से पहले हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस डेली बनाई, मेरा थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस का बैकलॉग था और तब जाके मैं फेमस हुआ। यानी एक नॉर्मल इंसान, जस्ट बिकॉज उसकी ब्रांड ऐसी है कि वो कोई काम नहीं करता, एक नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि यार ये तो खाली बैठा रहता है, ये तो बेरोजगार है, तो कोई काम कर ही नहीं रहा, इसको क्यों सक्सेस मिल रही है, इसको क्यों इतना फेमस किया जा रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप उसके वर्क एथिक को नहीं समझ रहे, आप बस सरफेस लेवल पर उसे जज कर रहे हो या फिर उसे फॉलो कर रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे कि मैं इस इंसान से सीख क्या सकता हूं। अब एक इंसान अगर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस डेली बना रहा है और आप ये बोल सकते हो कि यार वो वीडियोस तो काम की भी नहीं है, उससे तो किसी की लाइफ भी चेंज नहीं हो रही, बट अगर वो जाने अनजाने में उन्हीं सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है जिनसे रिजल्ट आना पक्का होता है, और वो ये विश्वास रख रहा है कि चाहे मेरे को अभी रिजल्ट ना मिले, चाहे मेरे को कभी रिजल्ट ना मिले, लेकिन जस्ट बिकॉज ये काम करना जरूरी है मैं इस काम को करूंगा, तो इवेंचुअली उसे आगे चलकर रिजल्ट दिख जाता है। और यही होता है लीप ऑफ फेथ लेना, विश्वास करना कि अगर मैं काम करता रहूं और खुद को इम्प्रूव भी करता रहूं, ये नहीं कि बस आंख बंद करके काम करता रहूं, समझ के साथ काम करता रहूं, तब इवेंचुअली आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देते हैं अपने स्पोर्ट की तरफ और वो सिनोनिमस बन जाते हैं उस स्पोर्ट के साथ। जैसे जब भी हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तब कोहली, तेंदुलकर, धोनी ये लोग खुद ही दिमाग में आ जाते हैं। जब आप बास्केटबॉल के बारे में सोचते हो तब कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन ये खुद दिमाग में आ जाते हैं। जब आप WWE के बारे में सोचते हो तब जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर ये खुद दिमाग में आते हैं, बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत करके खुद को घोल लिया है उस प्रोसेस में पूरा। वो प्रोसेस से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि आप उनमें और उस खेल में डिफरेंस ही नहीं बता सकते हैं। एक मेरे पास रील आई थी विराट कोहली की, जहाँ पर वो ये बोल रहे थे अपनी गेम को समझाते हुए कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हैं। वो ये बोल रहे थे कि जब भी आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो तब आप अच्छा कुछ भी प्ले नहीं कर सकते हो, और आपको फ्लो में जाना होता है, आपको उस गेम में घुल जाना होता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि यार ये क्या बोल रहा है कि दिमाग को ऑफ कर लूँ, क्या मैं बेवकूफ़ बन जाऊँ। नहीं, ये जो बात होती है ये बात हो रही है फ्लो स्टेट की, कि आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो कि मैं करूँ ना करूँ, बिकॉज इस तरह आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे सकते हो और आप अपना बेस्ट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आप कभी भी 100% सर्टिनिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, कि आप सक्सेसफुल बनोगे या फिर अनसक्सेसफुल। जिस तरह से पहली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए आपको आखिरी सीढ़ी को देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको अपने एंड रिजल्ट में इतना घुसने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं सक्सेसफुल बनूंगा, क्या ये जो भी एक्शन मैं लेने वाला हूं कुछ मेरे को वापस देगा। जिस तरह से कृष्ण ने भगवद्गीता में बोला है कि तुम फल की चिंता मत करो कि एंड रिजल्ट क्या होगा मेरे काम का, तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, बस उसे पूरा करो और एंड रिजल्ट तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बोलना बंद करो कि मैं लेजी इंसान हूं, मैं अपनी लेजीनेस को कैसे ओवरकम करूं। अपने अंदर साहस लाओ और मार दो दूसरी तरफ छलांग। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अगर आपको ये एपिसोड पसंद ना आया हो या फिर आप किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक करो और कमेंट्स में एक हेल्दी डिबेट करते हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि 25th August 2023 को हम गांधी यूनिवर्सिटी को लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे साथ में लाइव क्लासेस के साथ। बिकॉज मैंने आपसे ये फीडबैक लिया है कि जब भी आप कोई प्री रिकॉर्ड कोर्स लेते हो तब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो आपकी स्पेसिफिक इशू है, उसको दूसरा इंसान सॉल्व ही नहीं कर पाता। इसलिए चाहे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, चाहे आपको अपने ट्रॉमास को हील करना है, चाहे आपको ज़्यादा मैस्कुलिन बनना है, अलग अलग टॉपिक्स, बहुत वेरीड टॉपिक्स पे हम कोर्सेज बना रहे हैं और ये सब आपको मिलेगा अंडर वन पैकेज। सो स्टे ट्यून्ड।